माधव कुंज बिहारी ज राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय रथ माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरिषत् श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरिषत् श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की उपस्थित भक्तवृंद की उपस्थित भक्तवृंद की जय उपस्थित भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है पुनः इस सत्र में वृंदावन लीला के असुर। क्योंकि थोड़ा समय बीत गया है इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से पहले जो हमने किया है उस पर संक्षेप में चर्चा नहीं करें, केवल देखें कि क्या किया है और फिर आज की लीला प्रारंभ करेंगे। तो हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद ने हम लोगों के ऊपर कृपा की है। चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं इस जगत में हम सबके पापों को हरने के लिए और हमारे अंदर जो हृदय में असुर बैठे हैं उनको निकालने के लिए, उनको मारने के लिए हमें किस प्रकार कृष्ण से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को समझना चाहिए, कैसे उनकी नित्य लीलाएं और नैमित्तिक लीलाएं होती हैं और जिन असुरों को वो मारते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन बाधाओं का जो हमारे लिए भक्ति मार्ग में आते हैं। भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जो श्रद्धा से प्रारंभ होकर प्रेम तक जाती हैं और जिनमें अनर्थ निवृत्ति ये कलमशों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। और अगर कोई व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति कर लेता है तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वो भक्ति में स्थिर हो सकता है, लेकिन ये अनर्थ हमारे भक्ति के प्रगति को रोक देते हैं। चार प्रकार के अनर्थों के बादल होते हैं जो शुद्ध चेतना को आवृत्त करते हैं। एक पूर्व पाप से उत्पन्न अनर्थ, पूर्व पुण्य से उत्पन्न अनर्थ, भक्ति में की गई गलतियों के द्वारा उत्पन्न अनर्थ और भक्ति में किए गए अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। इन सब की चर्चा भी हम लोगों ने विस्तार में की थी। तो ये सारे अनर्थ असुरों के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हैं और ये किस किस असुर का क्या सूचक है, कौन कौन सा असुर किस चीज का सूचक है, किस अनर्थ का सूचक है, इसका वर्णन हम लोगों ने किया था। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब तक ये सारे असुर नहीं मारे जाते हम लोग ब्रज भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर हमने एक एक असुर का वध करना प्रारंभ किया था। सबसे पहले पूतना, किस प्रकार पूतना का वध भगवान ने किया, और जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ ये श्रवण करता है कि किस प्रकार कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो वह कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बतलाया गया था पूतना अपने पूर्व जन्म में रत्न माला थी। फिर कैसे पूतना आई, भगवान ने उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण ही खींच लिए और फिर पूतना का वध हुआ। अन्य प्राय सभी असुर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए थे, लेकिन पूतना को भगवान ने धात्री का स्थान दिया, वो भी अपने धाम में। और इसी को याद कर करके उद्धव ये बतलाते हैं कि पूतना के उदाहरण से हम ये जान सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। पूतना एक कपटी गुरु का सूचक है, जो भक्ति की शुरुआत में ही हमें भक्ति मार्ग से भ्रष्ट कर देता है, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और फिर मन भी एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करता है जो हमें धोखा देता है। अपने अपने पूर्व कर्मों से अर्जित हम सब के अलग अलग स्वभाव होते हैं। शरीर एक जैसा हो सकता है लेकिन स्वभाव अलग अलग होते हैं, और इस कारण से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग एक कपटी गुरु की शरण लेते हैं वो अपनी सही स्थिति को नहीं जान पाते, एक ऊंचे दर्जे की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, फाल्गु वैराग्य को दर्शाते हैं, भगवान को जान नहीं पाते, भक्ति मार्ग को नहीं समझते और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाते। इन सारी चीज़ों का हम लोग वर्णन कर रहे थे। तो हमें कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना करना चाहिए कि एक प्रमाणिक मार्ग दर्शाएं, एक प्रमाणिक गुरु की शरण जाना चाहिए और साथ ही साथ सदैव भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की संशय शंका को फलने फूलने नहीं देना चाहिए। मन को भी वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, मन को व्यस्त रखना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, जूते से मारना चाहिए। कोस हमने समझाया था कि जूता लेकर मारना प्रारंभ मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से गुरु के आदेशों का अगर हम कड़ाई से पालन करेंगे तो अपने मन को वश में कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा दर्शाने के लिए पूतना के प्राण हर लेते हैं, जिससे कोमल अर्थात ऐसे भक्त जिनकी श्रद्धा अभी कोमल है उनका रक्षण हो सके। तो पूतना लीला से हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हमें कंस जैसे भौतिकवादियों को पनपने नहीं देना चाहिए, ऐसे धर्मों को पनपने नहीं देना चाहिए जो योजनाबद्ध तरीके से असली धर्म को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने शक्टासुर की कथा प्रारंभ की, किस प्रकार शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न होकर चर्चा कर रहे हैं, और कैसे शक्टासुर अपने पूर्व जन्म हिरण्याक्ष का पुत्र था, और किस तरह से भगवान ने शक्टासुर का वध किया केवल अपने पाँव के स्पर्श से। उनको कोई बहुत विशाल रूप जैसे कि वामन देव या नरसिंह देव का धारण नहीं करना पड़ा, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान हैं जो केवल अपने पाँव के स्पर्श के मात्र से ही असुरों का वध कर देते हैं। तो इस तरह शक्टासुर का वध हुआ। शक्टासुर की लीला से हम लोगों ने सीखा कि जीव को भार ग्राही नहीं बनना चाहिए अपितु सार ग्राही बनना चाहिए। भारवाही बनते बनते या रहते रहते इस जगत में हम लोग कई आदतों का, बुरी आदतों का भार, कर्तव्यों का भार या फिर जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी चीज़ों का भार हम लोग उठाते रहते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत चेतना अगर नहीं है तब फिर ये भौतिक विज्ञान की प्रगति केवल एक बोझ है। इसीलिए शास्त्र समझाता है कि जो मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकता वह शरीर का भार है। और हम लोगों ने एक बड़ी सुंदर कथा से ये भी देखा कि दरअसल कृष्ण ही भक्तों का भार वहन करते हैं। हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए साधनों का प्रयास नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ आलस्य का भी परित्याग करना चाहिए, जैसा कि कृष्ण ने भगवद्गीता में अर्जुन को समझाया। हमें एक सैन्य अनुशासन के सदृश, जैसे कि सेना में एक अनुशासन होता है, उसके अनुसार हमें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना बड़ा आवश्यक है। शक्तासुर की लीला से हम लोगों ने समझा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसका प्रमाण वो देते हैं। हर स्थिति में वो भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे से बालक हैं तो भगवान नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे गुरु के आश्रम से, तो भगवान होंगे। कृष्ण हर स्थिति में भगवान हैं। और हम सब कई प्रकार के भारों को उठा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन बोझ के तले दबा हुआ है। हमें केवल कृष्ण पर पूर्ण आश्रित होना है। और जितने भी हमारे भार हैं या ऐश्वर्य है, ज्ञान है, ये केवल भार बनेंगे अगर हम इन्हें कृष्ण भक्ति में नहीं लगाएंगे। और हमें स्वधर्म पालन करना चाहिए। स्वधर्म की क्या व्याख्या है, इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और कृष्ण को पूर्ण समर्पण, तुमी तो रक्षक आर पालक आमार, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो इस प्रकार से शक्तासुर का वध हुआ था। और फिर तृणावर्त की लीला हम लोगों ने प्रारंभ की कि किस प्रकार तृणावर्त अपने पूर्व जन्म में एक राजा था, सहस्राक्ष, और फिर वो ज्ञान से उत्पन्न वाद विवाद का प्रतिनिधित्व करता है। फिर हम लोगों ने लीला देखी कि कैसे भगवान भारी हो गए, फिर हल्के हो गए, तृणावर्त उन्हें उठाकर ले गया और बहुत ऊंचे ले गया। कितना ऊंचा ले गया था? हाँ, 800,000 मील की ऊंचाई पर। और कितनी देर तक थे भगवान वहां पर? 1 घंटे तक सैर कर रहे थे। तो इस तरह से फिर भगवान ने जब सैर ज्यादा हो गई तो फिर उसका वध कर दिया और वो फिर नीचे गिर गया, उसके सारे अंग इधर उधर चले गए। तो इस तरह से जो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होता है अहंकार, उससे वाद विवाद होता है और ऐसे विवाद को जन्म देता है जो शुद्ध भक्ति के विपरीत हैं। ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बड़ी तेजी से जा रहे हैं। भगवान कृष्ण भक्तों की नम्रता से प्रसन्न होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, पहली उनकी बद्ध चेतना होती है और दूसरा कृष्ण चेतना। तो इसके सार के रूप में हम लोगों ने देखा था कि हमें बद्ध चेतना से कृष्ण चेतना की ओर जाना है, और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण गुणों पर हम लोगों ने चर्चा की थी, निस्वार्थ भावना, नम्रता और निर्भयता। और किस प्रकार से ये गुण हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, इन पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी, और उसका क्या फल होता है ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नम्रता का अर्थ भी बतलाया, जब तक व्यक्ति का हृदय में नम्रता नहीं हो, राधा कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में नहीं आ सकता। और निर्भयता, ये समर्पण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हमें भक्ति में प्राप्त करना होता है। लेकिन यह सब प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है, जब तक हम इसे अपने बल पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम अपने सबसे बड़े शत्रु बने रहेंगे जब तक हम एक प्रमाणिक गुरु को समर्पण नहीं करते हैं। और फिर हमें राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने आप को जो मानते हैं उसे त्यागना चाहिए और गुरु के हाथ में कठपुतली बनना चाहिए। इस विषय पर बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी। तो भक्ति मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण ये अंग है कि हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है, हम जो हैं उसे त्यागना है। इस बात को आप लोग कभी भूलिएगा मत। इस जगत में 2 ही सत्य हैं, जीव और भगवान का नाम। हमने वर्णन किया था उस पुष्प का, रस के पुष्प का, कि किस तरह से उसकी अलग अलग, हरि नाम जो है उसकी कली है, भगवान के गुण उसकी सुगंध है, ये सब वर्णन हम लोगों ने किया था। और भगवान को उनके नाम से अभिन्न मानने का प्रयास करना चाहिए, और किसी भी अवस्था में हमें निश्चल रहना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। तृणावर्त मिथ्या अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम तृणावर्त को मारना है तो तृणवत बनेंगे, तो कृष्ण इस असुर का वध कर देंगे। इसीलिए बार बार कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए, और इस नाम के द्वारा ही हमें भगवत साक्षात्कार हो सकता है। फिर हम लोगों ने दामोदर लीला पर पिछली बार चर्चा की थी, किस प्रकार भगवान इस लीला के द्वारा दिखलाते हैं कि कैसे ऊंचे जन्म और ऐश्वर्य से अहंकार प्रकट होता है। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से ये लीला प्रारंभ हुई थी कि कैसे कुंती महारानी कहती हैं, जब उन्होंने उस दृश्य को देखा था कि जब कृष्ण भाग रहे थे, यशोदा माता उनके पीछे भाग रही थी, कुंती महारानी वहाँ उपस्थित थीं और उस दृश्य को देख रही थीं, इसीलिए आगे चलकर वो उसका वर्णन करती हैं। तब फिर कैसे कृष्ण क्रोधित हुए, कृष्ण ने माखन खाना प्रारंभ किया, किस प्रकार से कृष्ण ने मटकी फोड़ दी और माखन सारा गिर गया, दही गिर गई, और फिर उस दही पर पांव रखते हुए भगवान चले गए। इस तरह की सारी ये लीला हुई और कैसे यशोदा माता छड़ी लेकर भागी, जैसे ही कृष्ण ने देखा तो वो भी भागे और फिर पूरा ब्रज में हंगामा हो गया कि आज तो यशोदा कृष्ण को पकड़ रही है। और फिर यशोदा माता ने पीछे भाग भाग कर अंत में पकड़ ही लिया अपने प्रयास और कृष्ण की कृपा से। और जब भी उन्होंने रस्सी को बांधने का प्रयास किया, भगवान को बांधने का, तो रस्सी दो उंगुल छोटी थी, दो चीज़ें अर्थात प्रयास और कृपा। और फिर हमने नलकुबर और मणिग्रीव की कथा को भी सुना था कि किस प्रकार भौतिक ऐश्वर्य के कारण जीव नशा और मैथुन, द्यूत क्रीड़ा और पशु हत्या में लगता है, और जब इन सारी चीज़ों में रत होता है तो ये भूल जाता है कि ये भौतिक शरीर नाशवान है, नारकीय जीवन की ओर जाता है और जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेध मान मदपमान, ये सब मद हैं और इस मद में रहकर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। और नारद मुनि बड़ा सुंदर फार्मूला, बड़ी सुंदर उपाय बताते हैं कि व्यक्ति को निर्धन बनना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का निर्धन, ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से निर्धन होने से सत्संग बड़ी आसानी से मिल जाता है और फिर हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो प्रार्थनाएं नलकुवर और मणिग्रीव ने की भगवान से कि वो क्या चाहते हैं, और हमने आप सब से भी ये कहा था कि आप सब भी इन प्रार्थनाओं को करें, कि ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए जब हम भगवान के समक्ष खड़े हों, कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें कि हमारी वाणी आपके गुणानुकीर्तन में लगे, श्रवण हमारे जो कान हैं वो आपकी कथा के श्रवण में लगें, हाथ आपकी सेवा में लगें इत्यादि। तो इस तरह की प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। और फिर इसका सार था कि अगर हम सादा जीवन जिएंगे, सादा जीवन उच्च विचार, तब फिर हम बड़ी आसानी से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी चर्चा की है। तो अब जब ये चर्चा हो चुकी भागवत में, उसके बाद गोकुल से ऐसा सब लोगों ने चर्चा की, गोप बालों ने, गोपों ने, सब ने बैठकर एक चर्चा की कि यहाँ पर बहुत सारे असुर आ रहे हैं, कृष्ण को बहुत तंग कर रहे हैं, और अभी तक तो कृष्ण बचे हैं लेकिन आगे पता नहीं कैसे कैसे असुर आएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हम लोग यहाँ से वृंदावन चले जाएं, वहाँ पर जाकर आराम से रहेंगे, इस गोकुल को अब हम छोड़ देते हैं। दरअसल भगवान ब्रज में घूमना चाहते थे, एक जगह रह रहकर थोड़ा सा ऊब गए थे कि गोकुल में ही रह रहा हूँ, वहाँ नहीं रह रहा, वहाँ के जो और अन्य प्राणी हैं वो भी चाहते हैं मेरा संग, और फिर वृंदावन की लीला भी तो प्रारंभ करनी थी। तो इसीलिए सारे के सारे लोग गोकुल से वृंदावन आ गए और वृंदावन में रहने लगे। अब वृंदावन की लीलाओं का बड़ा मधुर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि गोपियाँ भगवान को चिढ़ाया करती थी, कृष्ण को चिढ़ाया करती थी, और कुछ कहती थी कि अगर तुम मेरे लिए नाच कर दिखाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा मक्खन दूंगी। और वो कृष्ण जिनके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सब कुछ उनसे आता है, सब कुछ उनके अंदर है, वो सबके अंदर हैं। ऐसे कृष्ण वो नाचा करते थे अपने दोनों हाथ ऊपर करके, और जैसे छोटा सा बालक नाचता है, वो केवल वो थोड़े से माखन के लिए। अब ऐसा नहीं था कि कृष्ण माखन के लिए नाचते थे, माखन तो उन्हें बहुत मिलता था। हमने दामोदर लीला में सुना है कि कृष्ण हर घर में जाकर माखन खा लिया करते थे, और यशोदा माता स्वयं अपने हाथों से उनको माखन बनाकर खिलाया करती थी, और बहुत माखन रहता था घर में। लेकिन कृष्ण उस प्रेम को देखते थे, उस भाव को देखते थे जिससे गोपियां उनसे ये बात कहा करती थी। और जैसे आज सुबह हम वर्णन कर रहे थे रुक्मिणी हरण की लीला में, पद्म पुराण का वो श्लोक जिसमें स्वयं भगवान कहते हैं कि वैष्णवों के अधीन सारा जगत है, वैष्णवों के अधीन ये देवता हैं, और मैं स्वयं वैष्णवों के अधीन हूं। अहम च वैष्णवाधीनस, मैं स्वयं वैष्णवों के अधीन हूं। तो यहां इस लीला में भगवान ये दिखलाते हैं कि उनके प्रेम से बंधकर छोटे से बालक के रूप में वो नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, केवल थोड़े से माखन को पाने के लिए। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर वो लीलाएं किया करते और बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वे उनकी इच्छा अनुसार नाचते मानो वो उनके हाथ की कठपुतली हों, और कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते थे। कहना चाहिए कि भगवान गोपियों के पूर्ण रूप से वश में थे, जो गोपियां कहती वही करते। गोपियां कहती नृत्य करो, वो नृत्य करते, थोड़ा सा गा के दिखाओ, वो गा के दिखाते। और कभी कभी यशोदा माता या अन्य गोपियां कोई चीज उठाकर लाने के लिए कहती, या कभी कभी नंद महाराज वो कहते कृष्ण को कि जाकर मेरी खड़ाव उठा लाओ, तो छोटे से कृष्ण उस खड़ाओं को अपने सर पर रखकर लेकर आते थे। आप सोचिए कितना मनोरम दृश्य होगा, कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, सारा सौंदर्य उनमें है, और वो सौंदर्य वही सौंदर्य को अपने बाल रूप में समाये हुए कृष्ण छोटे छोटे पांव से चलते हुए वो अपने सर के ऊपर नंद बाबा की खड़ाओं रख कर लेकर, और केवल नंद बाबा के लिए नहीं, कभी कभी गोपियां कहती थी तो गोपियों के लिए भी उठा कर लाते थे। तो ऐसी ये सुंदर वो लीलाएं किया करते, तो ऐसी लीलाएं ब्रज में वो कर रहे थे। करते करते ऐसा समय आया, करीब 3 वर्ष से कुछ ज्यादा के थे कृष्ण, तो कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि अब वो बछड़ों को चराने जाना चाहते हैं, अब वो वत्स पालक बनना चाहते हैं। गोपालक अभी नहीं बने, अभी वत्स पालक बनना चाहते हैं, वत्सों को बछड़ों को लेकर जाना चाहते हैं। तो नंद महाराज वो इतनी उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी सबके कहने पर वो मान गए, लेकिन यशोदा माता ने नहीं माना। यशोदा अभी भी उन्हें अपना स्तनपान कराती थी और बड़े छोटे थे, और वो कहने लगी कि ये इतना छोटा बालक, ये थोड़ा पर्दों को ठीक रखिए, और वो कहने लगी कि ये इतना छोटा बालक ये कैसे जा सकता है वन में, और कैसे ये बछड़ों को संभालेगा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तो यशोदा इस बात के अनुमति नहीं दे रही थी। बाकी सारे जो लोग थे, नंद बाबा भी मान गए थे कि ठीक है, ये तो इसका काम है, गोबालक है, ये ग्वाल है, तो इस ग्वाल बाल को जाना चाहिए गायों की सेवा के लिए। लेकिन यशोदा माता के हृदय मान नहीं रहा था कि कैसे मैं छोटे से बालक को भेजूं। तो उन्होंने बहुत ही भारी हृदय से इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त पर भेजूंगी कि ऐसे नंगे पांव नहीं जाएगा, इसको जूते पहनने चाहिए ठीक से, और एक व्यक्ति इसके साथ छाता लेकर जाना चाहिए, क्योंकि धूप में जाएगा, बाहर इतनी तेज धूप होती है, जंगलों में जाएगा तो कैसे रह पाएगा। तो उस समय बड़ा सुंदर सिद्धांत धर्म का भगवान बतलाते हैं। कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि अगर मुझे जाना है इन बछड़ों को लेकर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जूते पहनकर जाऊं, तो ये जो हर एक गाय है इन सबको भी जूते पहनाने होंगे, अर्थात एक एक के लिए चार चार जूते। 9 लाख गायें थीं, चार चार जूते मतलब 36 लाख जूते, पूरी बाटा कंपनी चालू करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि इन सबको आपको जूते पहनाने होंगे, और इतना ही नहीं, हर एक गाय और हर एक बछड़े के साथ एक आदमी छतरी लेकर भेजना होगा, तो वो छाता पकड़े रहेगा हर एक गाय के ऊपर, हर एक बैल के ऊपर, हर एक बछड़े के ऊपर, और तब हम ऐसे जाएंगे। तो यशोदा माता थोड़ी भ्रमित हो गई कि ऐसे क्यों कह रहा है। और तब कृष्ण ने धर्म का एक बड़ा ही सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया, धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान कहते हैं कि हम ग्वाल हैं, हमारा धर्म है गायों का पालन करना, गायों की रक्षा करना, और अगर हम इस धर्म का ठीक से पालन करेंगे, गायों के पालन ठीक से करेंगे, तब फिर गायें हमारी रक्षा करेंगी, वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म का रक्षण करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समाज में ये माना जाता है कि धर्म पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई थोड़े से लोग हैं जो धर्म का पालन करें, जो धर्म की रक्षा करें, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मो रक्षितः, तब फिर धर्मो रक्षति, तब फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा, रक्षितः। और अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तब फिर धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। आप सोचिए, अगर समाज में आपकी रक्षा धर्म कर रहा है, तब फिर कौन है ऐसा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, विशेष करके हम भक्तों का। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम स्वतंत्र कब हो सकते हैं, हम पूर्ण समर्पित कब हो सकते हैं, जब हम इस सिद्धांत को समझें। धर्मो, अगर हम धर्म का रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम अपने जीवन में ठान लें कि हमें जीवन भर धर्म की रक्षा करनी है, और वो अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अपना घर छोड़ना है, अपना समाज त्याग देना है, अपनी स्थिति को त्याग कर कहीं जंगल में जाना है, या बहुत तलवार लेकर घूमना है, नहीं। धर्म का रक्षण जहां है, जिस स्थिति में है, वही रहकर धर्म का प्रचार करके हो सकता है। जितना ज्यादा हम धर्म का प्रचार करेंगे, और कैसा धर्म, भागवत धर्म। और भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म सारे झूठे धर्मों को बाहर करके शुरुआत होती है। भागवत की शुरुआत हुई है जिसमें सारे कैतब धर्मों को त्याग दिया गया है, या कहना चाहिए, प्रभुपाद समझाते हैं, झाड़ू मारकर बाहर निकाल दिया गया है। किसी ऐसे कैतब धर्म, झूठे धर्म को भागवत में स्थान नहीं दिया गया है। तो फिर किस धर्म की बात हो रही है, भागवत धर्म। कौन सा धर्म, जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, समसिद्धिम हरि तोषणम। तो ऐसे धर्म की जब हम रक्षा करते हैं या उसका प्रचार करते हैं, तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसी रक्षा, शरीर की रक्षा नहीं, हमारी भक्ति की रक्षा करता है। अर्थात जितना ज्यादा हम भगवान के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा भक्ति में हमारा रक्षण होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भक्ति तो करूंगा, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं पीछे रहूंगा। ये अच्छा है एक दृष्टि से, हमें आगे जाने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन अगर सेवा के लिए हमें कोई जिम्मेदारी लेनी पड़े तो हमें कतराना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। आचार्य समझाते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त जितना ज्यादा भगवान के लिए जिम्मेदारी लेता है, आगे आकर जिम्मेदारी से अपनी सेवा करता है, वो उतना ही ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ता है। जितना ज्यादा हम सेवा से दूर जाते हैं, एक जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते, उतना ज्यादा हम भक्ति में पीछे चले जाते हैं। जब हमें कोई सेवा दी जाए तो हमें यह मानना चाहिए कि यही मेरे प्राण हैं। हर सेवा को अपने प्राण मानकर पूरा करना चाहिए। कभी कभी भक्ति में हमें सेवा दी जाती है, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में कई भक्तों को सेवाएं दी जाती हैं, और कई भक्त कई वर्षों से ऐसी सेवा कर रहे हैं कि कभी उन्हें भगवान के दर्शन ही नहीं होते हैं। जैसे पार्किंग की सेवा, वो भक्त वहां खड़े रहते हैं सड़क पर उस कोने में और बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन उन्हें मानना चाहिए कि यही भक्ति में उनकी रक्षा कर रहा है। इस तरह से कई सेवा हमने ये उदाहरण दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल पार्किंग करने वाले सेवा करते हैं, बाकी भी चप्पल सेवा, वो लोग कभी बाहर ही नहीं आ पाते, और ये कितनी महत्वपूर्ण सेवा है। इतने सारे भक्तों की चरण धूलि का स्पर्श उन्हें होता है, तो बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है और वही रक्षा करती है। तो ऐसे सारी सेवाएं, प्रसाद वितरण, प्रसाद बनाना, अभिषेक कराना, ऑल्टर में सेवा, जितनी भी सेवाएं, अगर हम इसको बड़े ध्यान से करें, ये अवसर है हमारे लिए। कभी कभी हम सेवाओं से कतरा जाते हैं कि अरे हम ये सेवा नहीं करेंगे, इतने समय से कर रहे हैं। नहीं, एक समय एक ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, मुझे लगता है मैं ब्रह्मचारी नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए मुझे गृहस्थ बनना है। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो थोड़े समय और सेवा करो और फिर गृहस्थ बन जाना। तो फिर वो सेवा करता रहा करता रहा, और एक समय उसने देखा, वो गुरु के लिए लकड़ियां लाया करता था यज्ञ करने के, एक समय उसने देखा कि लकड़ी में कोई एक सफेद बाल है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सफेद बाल कैसा, और जब उसने वापस आकर चेहरा अपना देखा तो वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी दाढ़ी हो गई थी सफेद, बाल सफेद हो गए थे। अर्थात युवा अवस्था में उसने अपने गुरु से पूछा था कि मैं विवाह करना चाहता हूं, और सेवा में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके बाल सफेद हो गए, कब वो वृद्ध हो गया। ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए। सेवा करते समय हमें ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मेरा आगे क्या होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे कृष्ण ने यहां बतलाया कि अगर हम गायों की सेवा कर रहे हैं तब फिर गायें हमारा रक्षण करेंगी, वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए भक्तों को सेवा के समय भगवान के विग्रह की सेवा हो, या भगवान के मंदिर की सेवा हो, या कोई भी अन्य सेवा हो, ये बड़ा अनमोल अवसर है हम लोगों के लिए। दरअसल ऐसा हो गया है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये भगवान की सेवा बड़ी सरलता से मिल जाती है। आप देखिए हम लोगों की क्या योग्यता है, कुछ नहीं, और हम लोग जाते हैं और भगवान को प्रत्यक्ष अभिषेक कराते हैं, भगवान के विग्रह, भगवान को स्वयं हम श्रृंगार कराते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान के लिए कई तैयारियां करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भागवत को स्पर्श कर पाते हैं। क्या योग्यता है हमारी। आप में से कई लोगों ने भागवत लिया होगा, श्रीमद् भागवत आपके घर में होगा, तो भागवत पढ़ते हैं हम लोग। हमारी क्या योग्यता है भागवत को स्पर्श करने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भागवत को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योग्य नहीं है। ये भागवत अमल पुराण है, साधारण पुराणों को ही स्पर्श करना बड़ा कठिन है, फिर भागवत तो बड़ी ऊंची चीज है। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद की कृपा कि ऐसे पतित जीवों को भी उन्होंने ये अवसर दिया कि हम भगवान की सेवा कर सक रहे हैं, हम भगवान के नाम का प्रचार कर पा रहे हैं, भगवान के लिए हार बना पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति के लिए कोई सेवा करते हैं तो बड़ा उनको अहंकार होता है। आज हम दिन में काफी जगहों पर गए थे, ऐसे कई लोगों के पास जो समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं, जिनका बड़ा यश है, तो हमने देखा कि उनके घरों में या उनके ऑफिस में जो लोग उनके सेक्रेटरी हैं या उनके प्यून हैं, बाहर सलाम मारने के लिए खड़े रहते हैं, उनमें भी बड़ा अहंकार है कि मैं फला फला व्यक्ति का प्यून हूं, मैं फला फला व्यक्ति का द्वारपाल हूं। तो सोचिए, इस जगत में ये छोटे मोटे व्यक्ति, इनका यश क्या यश है। हम लोग कीड़े भी नहीं है भगवान के सामने, कीड़े के समान, जो कीड़े उड़ते हैं यहां पर छोटे छोटे, हम उतने भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की सेवा करके कोई व्यक्ति अहंकारी बन जाता है या सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, मैं फला फला व्यक्ति का पीए हूं। तो सोचिए, भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, उनकी सेवा करते हुए हमें कैसा महसूस होना चाहिए, क्या अनुभव होना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि जब हम भगवान के दर्शन करें तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमारी आंखों को इतनी शक्ति दी है। जैसे आज सुबह रुक्मिणी देवी वर्णन कर रही थी, आप में से जो लोग आए थे उन्होंने सुना था कि रुक्मिणी देवी वर्णन करती हैं कि जिसकी आंखें हैं उसको भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये भगवान की कृपा है कि वो हमें अपनी सेवा में लगाते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैंने धन दिया है भगवान को, ऐसा नहीं है, कोई भगवान को धन नहीं दे सकता। ऐसे तो बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन भगवान चुनते हैं और केवल उन्हीं लोगों से वो सेवा लेते हैं। अब देखिए, जन्माष्टमी के समय में हम लोग कितने सारे लोगों के पास जाते हैं धन लेने के लिए, कुछ लोग देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, जो देते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, भगवान ने उनसे सेवा स्वीकार की है, और जो नहीं देते हैं उनके लिए हमारे हृदय में दुख होना चाहिए, कोई क्रोध नहीं आना चाहिए, दुख होना चाहिए कि अभी तक इसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई है। बहुत धन है इसके पास लेकिन कृपा नहीं है। इसीलिए धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का रक्षण करना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, और तब हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में धर्म हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण की सेवा, वो चाहे सीधे सेवा हो या फिर उनके नामों के उच्चारण के द्वारा सेवा हो या फिर उनके नाम के प्रचार की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा क्यों ना हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान के लिए समान है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर हम ऑल्टर में भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वही सेवा है, और अगर हम उनके भक्तों की चप्पल को उठाकर रख रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो निकृष्ट सेवा है। नहीं, वो तो बड़ी महान सेवा है। स्वयं भगवान ने ये सेवा की थी राजसूय यज्ञ में, जब युधिष्ठिर महाराज के अतिथि आ रहे थे, सारे ब्रह्मांड से अतिथि आ रहे थे, और हरेक की सेवा भगवान ने की थी उनके पांवों को धोकर। और ये कौन लोग थे, ये सब वही लोग थे जो केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे थे वहां पर। कृष्ण उनके आराध्य देव हैं, अभी कुछ ही समय बाद वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाने वाले हैं उसी यज्ञ में, लेकिन वो सबके पांवों को धो रहे हैं, सबके चरण चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये सेवा है। तो इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कृष्ण हमें इस लीला से दिखलाते हैं। तो फिर यशोदा माता को मानना पड़ा, क्योंकि इतने सारे जूते तो बन नहीं सकते थे, और बन भी जाते तो शायद गायें चलती नहीं उन्हें पहनकर, क्योंकि गायों को यह आदत नहीं है। तब फिर यशोदा माता मान गईं, बड़े भारी हृदय से उन्होंने कृष्ण को जाने की अनुमति दी। पहले दिन जब कृष्ण गए थे गायों को चराने के लिए, तो उस समय में नंद महाराज और यशोदा माता उनके साथ गए उनको सिखाने के लिए कि कैसे आपको वत्सों को चराना चाहिए, कैसे आपको बछड़ों को चराना चाहिए, तो इसको सिखलाने के लिए वो साथ में गए। वैसे यशोदा माता तो जाने ही नहीं देना चाहती थी, घबरा रही थी कि अगर कहीं बहुत अंदर जंगल में चला गया, कुछ हो गया, कोई असुर आ गया, कोई जानवर आ गया, तो कौन इसकी रक्षा करेगा। बलराम जी वैसे कह रहे थे कि आप चिंता मत करो, मैं इसकी रक्षा करूंगा, लेकिन बलराम भी तो अभी छोटे ही थे, बलराम तो बहुत बड़े नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कृष्ण 3 साल के हैं और बलराम 25 साल के हैं, वो भी तो छोटे थे। इसलिए यशोदा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे मैं अपने बालक को भेजूं, इसलिए साथ में गई, नंद महाराज भी साथ में गए। लेकिन कृष्ण और बलराम ने बड़ी ही जल्दी गायों को चराना सीख लिया और तुरंत अपने माता पिता से कहा कि आप वापस जाइए, अब हम गायों के बछड़ों को चराएंगे। तो नंद महाराज ने कहा ठीक है, ज्यादा अंदर मत जाना क्योंकि बहुत अंदर खतरा होता है, आपके लिए भी खतरा है और बछड़ों के लिए भी, इसीलिए पास में ही उनको चराकर फिर आप वापस आ जाना। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ था दरअसल, जिस समय कृष्ण ने बछड़ों को चराना प्रारंभ किया था, जिस दिवस पर। नंद महाराज हर चीज के लिए उत्सव मनाया करते थे, और उत्सवों में क्या होता था, ऐसा नहीं है कि उत्सव है तो कोई पिक्चर लगाकर बैठ जाया करते थे और सब लोग देखा करते थे और फिर बाद में पिक्चरों के गाने गाया करते थे, नहीं। उत्सव का अर्थ होता था ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, यज्ञ होते थे और फिर हरिनाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे बड़ा उत्सव है। हम लोग यहाँ उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रथ यात्रा इत्यादि, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, हरिनाम। जन्माष्टमी होती है तो हरिनाम चलता रहता है, रथ यात्रा में सारे सड़कों में हरिनाम चलता रहता है, कोई भी उत्सव। तो उत्सव मतलब ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण, जैसे जब अभिषेक होता है भगवान का तो मंत्रोच्चारण होते हैं, और फिर हरिनाम होना चाहिए। तो ऐसे उत्सव नंद महाराज मनाते रहते थे हर अवसर पर। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ और फिर गायों को, वत्सों को अर्थात बछड़ों को वो चराने लेने ले गए। अब फिर ऐसे रोज जाया करते थे बछड़ों को चराने के लिए भगवान। तो ऐसे ही एक समय में ये लीला हुई थी जिसमें एक असुर वहां पर आए जिनका नाम था वत्सासुर, और ये वत्सासुर कृष्ण के गायों में, जो कृष्ण बछड़ों को चरा रहे थे, चराया करते थे, तो उनमें वो मिल गए थे। तो आइए इस असुर की लीला को हम लोग श्रवण करते हैं। तो वत्सासुर की लीला, गर्ग संहिता के अनुसार वत्सासुर अपने पूर्व जन्म में प्रमल नाम का असुर था। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन कृष्ण की लीलाओं का किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विशेष करके खंड है जिसे श्री कृष्ण जन्म खंड कहते हैं, उसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा और ये जो कथाएं पूतनावध, तृणावध, शक्टासुर, इन कथाओं को बड़े विस्तार से बतलाया गया है, और गर्ग संहिता में भी कृष्ण की लीलाएं हैं। इससे हम जान सकते हैं कि कृष्ण लीला केवल भागवत में नहीं है, कृष्ण लीला प्रायः सभी पुराणों में है, पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में तो बहुत विस्तार से कई अध्याय कृष्ण लीला के हैं। तो इस तरह से गर्ग संहिता में बताया जाता है कि ये असुर था और ऐसे ही भ्रमण किया करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एक समय वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आप जानते हैं कि एक बड़ी ही विशेष चीज है। क्या है वो? कामधेनु गाय। क्या नाम है उसका? नंदिनी। और एक नाम रामायण की कथा में हम लोगों ने सुना है ना, याद है? शबला। सुना है आप लोगों ने? तो नंदिनी गाय, कामधेनु गाय, ये वशिष्ठ मुनि के पास थी और इसको पता चला कि ये गाय ये तो जो चाहो वो दे सकती है। बड़ी ही विचित्र अद्भुत गाय है ये, सारी मन की इच्छाओं को पूरी करती है। तब फिर प्रमिल ने सोचा कि मुझे ये गाय लेनी चाहिए, लेकिन उसने सोचा मैं तो असुर हूं, अगर मैं जाऊंगा मांगूंगा तो देंगे नहीं, और अगर युद्ध करूंगा तो वशिष्ठ मुनि की बड़ी शक्ति है। आप सब जानते हैं ना वशिष्ठ मुनि की शक्ति किस प्रकार। जब विश्वामित्र उनके पास आए थे एक राजा के रूप में, तो उनकी सारी सेना को समाप्त कर दिया था। फिर विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या की, शिवजी से बड़े अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, और फिर आए युद्ध किया, फिर भी हार गए, फिर ब्रह्मास्त्र लिया, फिर भी परास्त हो गए वशिष्ठ मुनि के केवल ब्रह्म दंड के तेज से। तो इस तरह वशिष्ठ मुनि की शक्ति है। तो ये असुर सोचने लगे कि मैं युद्ध से तो ले नहीं सकता, तो उसने सोचा कि मैं एक ब्राह्मण का रूप ले लेता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों को तो दान वो देंगे ही, वशिष्ठ मुनि मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और ब्राह्मण के रूप में वो भिक्षा मांगने आए। हर युग में हम लोग देखते हैं कि ये ब्राह्मण का रूप धरकर असुर भिक्षा मांगने आते हैं। रावण भी आए थे, उन्होंने भी ब्राह्मण का रूप लिया था, तो इसीलिए वो आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा, भिक्षाम देहि, मैं भिक्षा चाहता हूं। तो अब एक ब्राह्मण है, वशिष्ठ मुनि तो उन्हें देखते ही समझ गए। अब ये इतना मूर्ख था कि जब जान रहा था कि वशिष्ठ मुनि की इतनी शक्ति है, तो ये नहीं जान पाया कि अगर मैं रूप बदल कर जाऊंगा तो वशिष्ठ मुनि मुझे पहचान जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि तो जान गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, असुर है, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण के रूप में आया है, इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने कुछ कहा नहीं। ये प्रथा है। हम लोग देखते हैं कि जब अर्जुन और कृष्ण युद्ध करने गए थे एक ब्राह्मण का रूप लेकर, किससे युद्ध करने गए थे? जरासन से। तो वो भी ब्राह्मण के रूप में गए थे और जरासन ने पहचान लिया था ये ब्राह्मण नहीं है, इनके इतने चौड़े कंधे और कंधों पर वो धनुष का चिन्ह, धनुष रख रख कर वो चिन्ह बन गया, तो ये तो क्षत्रिय है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं तो मैं आपको जो आप मांगेंगे वो दूंगा। तो इसी तरह से वशिष्ठ मुनि पहचान गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, आप मांगो, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे आपकी गाय चाहिए, नंदिनी चाहिए। अब वशिष्ठ मुनि ये कह चुके थे कि वो देंगे, तो इसीलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी को दे दिया इस असुर को। अब हम लोगों ने यह भी रामायण की कथा में सुना था कि गाय में कितनी शक्ति थी। क्या किया था गाय ने? अपने शरीर से कई कई प्रकार के सैनिकों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने सारी सेना को समाप्त किया था विश्वामित्र की। तो गाय जब वो ले जाने लगे ब्राह्मण या असुर जो ब्राह्मण के रूप में थे, तो गाय से सहन नहीं हुआ और उसने कहा इस असुर से, प्रमिला ने कहा, प्रमिला नाम के असुर से नंदिनी ने कहा कि हे असुर, अभी वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने कहा हे असुर, आप ये नहीं समझिए कि हम लोगों ने आपको पहचाना नहीं है। हम लोगों ने अर्थात वशिष्ठ मुनि भी पहचान गए हैं और मैं भी पहचान गई हूं कि आप एक असुर हैं, तो ऐसा मत मानिए कि हमने पहचाना नहीं है। आपने समाज के नियमों का बड़ा उल्लंघन किया है, एक ब्राह्मण का रूप लिया है आपने, धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में गाय को पाने की इच्छा थी, तो इसीलिए मैं आपको यह श्राप देती हूं कि आप वत्स बन जाओ, आप एक बछड़ा बन जाओ। तो बछड़े को गाय मिल जाती है, तो आपको गाय पाने की इच्छा है तो बछड़ा बन जाओ और बछड़े के रूप में आपको गाय मिलेगी। तो तुरंत उसी समय वो बछड़ा बन गया, एक बछड़े का रूप हो गया, तो बड़ा दुखी हो गया क्योंकि असुर है। अब असुरों के लिए तो ये बड़े दुख की बात है, है ना? वैसे बछड़ा बनना तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रेम मिलता है छोटे से बछड़े को। मेरे गोकुल धाम में जब नया बछड़ा जन्म लेता है तो सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है, सब जा जाके उसको सहलाते हैं, उससे प्रेम करते हैं। बाकी गाय भी हैं, उनसे भी करते हैं, लेकिन विशेष प्रेम उस बछड़े से हो जाता है, छोटा सा। लेकिन असुर ये दुखी हो गया, फिर उसने क्षमा याचना की। उसने पहले प्रदक्षिणा की नंदिनी की, फिर वशिष्ठ मुनि की, और फिर उनसे क्षमा याचना करने लगा और उनसे कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, दोष हो गया है, तो कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। तो नंदिनी ने कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, श्राप तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप इसी रूप में रहोगे कई काल तक, काफी काल तक, और फिर जब कृष्ण आएंगे अपनी लीला करेंगे तब आप उनकी गायों में मिल जाओगे और फिर कृष्ण के द्वारा आपका उद्धार होगा। तो ये वरदान नंदिनी ने दिया। तो देखिए, गाय के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने इसका वध किया। अगर भगवान चाहते तो वध नहीं भी करते, उद्धार नहीं करते, क्या आवश्यकता थी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आती है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। खंबा तोड़ के बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े समय पहले सुना कि गोपियां वचन कहती थीं कि नाच के दिखाओ, तो नाचने लग जाते थे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अर्थात हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भक्तों में बड़ी शक्ति होती है, भक्त जो कहें वो सत्य होता है। तो दरअसल होता ऐसे है कि भक्त जो बोलते हैं वो सत्य नहीं होता उस समय के लिए, लेकिन जैसे ही उनके मुख से वचन निकलता है भगवान उसे सत्य कर देते हैं, क्योंकि भक्त ने कहा है वो सत्य करते हैं भगवान। फिर उसको करने के लिए भगवान को जो भी करना पड़े उसके लिए कोई उनको तकलीफ नहीं होती। उदाहरण, श्रील प्रभुपाद ने एक व्यक्ति से कहा, मेरे 108 मंदिर हैं, श्रील प्रभुपाद का एक भी मंदिर नहीं था, मेरे कई हजार शिष्य हैं, एक भी शिष्य नहीं था, मंदिर तो छोड़ो रहने के लिए भी ठीक से स्थान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा और उसको भगवान ने सत्य किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, क्योंकि प्रभुपाद ने कह दिया, क्योंकि उनके भक्त ने कह दिया, इसीलिए वो सत्य हो गया। तो दूसरी दृष्टि में भक्तों का कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता, भक्त जो कहते हैं वही सत्य है, क्योंकि कृष्ण उसको सत्य करते हैं। तो इसीलिए यहां पर नंदिनी, गायें तो भगवान को बड़ी प्रिय हैं, तो नंदिनी ने कह दिया और भगवान ने उसको सत्य करने के लिए ये लीला रची। तो इस तरह से एक समय जब कृष्ण और बलराम अपनी गायों को लेकर जा रहे थे, तो ऐसे समय में ये असुर, अब ऐसा हुआ था कि असुर काफी समय से था, फिर इसकी मित्रता कंस से हो गई थी। दरअसल इसका युद्ध हुआ था कंस से, और कंस ने हरा दिया था, फिर तब से मित्रता हो गई थी और कंस का मित्र हो गया था। जितने भी असुर आगे हम लोग देखेंगे, बकासुर है और अघासुर है, ये सारे कृष्ण के मित्र बन गए थे। लेकिन पहले नरकासुर, इसके मित्र थे ये सब। फिर युद्ध हुआ और फिर सारे कंस के मित्र बन गए। तो फिर कंस इन्हें भेजते थे, तो कंस ने वत्सासुर को भेजा कि जाओ और कृष्ण का वध कर दो। और फिर इस तरह से वत्सासुर कृष्ण का वध करने के लिए उनकी गायों में मिल गया। अब भगवान, ये तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में है, तो भगवान तो जान गए कि ये जो वत्स, ये जो बछड़ा आया है, ये दरअसल असुर है, और वो जान गए। तो फिर भगवान ने सोचा कि इसका वध करना चाहिए। क्यों वध करना चाहिए? क्योंकि ये असुर बछड़े का वेश धर करके आया है और अन्य बछड़ों के बीच में घुस गया है। तो फिर उस समय उन्होंने बलदेव जी से कहा, यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन कहा है, किया गया है, कि उन्होंने बलदेव को इंगित किया, यह रहा दूसरा असुर। तो यहां पर वर्णन है, तम वत्स रूपीनम वीक्ष्य वत्स युध गतम हरिः दर्शयन बलदेवाय शनै मुभ इवासदत्। वो बता रहे हैं, बलदेव जी को कह रहे हैं कि यह रहा दूसरा असुर। दूसरा असुर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान रोज असुरों का वध करते रहते थे, कभी एक कभी दो, जैसी उनकी इच्छा होती थी। कभी कभी थोड़ा ज्यादा शक्ति प्रदर्शन की इच्छा होती थी तो दो तीन मार देते थे, नहीं तो एक असुर तो ये रोज का काम था। जैसे ऐसा मानना चाहिए कि अगर भगवान ने असुर को नहीं मारा तो फिर भोजन पचन नहीं होता था, तो उनको मारना ही था। इसलिए कह रहे ये रहा दूसरा असुर, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। आप सोचिए, यहां पर भक्त बैठे हैं और अगर हमें पता चले कि भक्तों के बीच में एक आतंकवादी आ गया है AK-47 लेके, अभी AK-47 नहीं, अभी तो और आगे आ गई होंगी ना, AK-47 तो बहुत पहले की, तो हमें पता चले ऐसे ही अंधेरा है और इसमें एक आतंकवादी बैठ गया है, तो आप लोग कैसा विचार होगा आपका? क्या आप कहेंगे ये रहा और एक आतंकवादी, ऐसे कहेंगे? हाँ। फिर यहां पर ऐसा होगा कि केवल वो आतंकवादी होगा और हम होंगे, क्योंकि हम भाग नहीं सकेंगे यहां से, है ना, और बाकी सब हरि बोल। लेकिन यहां कृष्ण, क्योंकि उनके लिए ये तो आनंद है असुर को मारना, तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं ये रहा और एक अन्य असुर। फिर वे उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंचे, मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे थे। तो यहां पर वत्सासुर जो एक छोटे से वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में आता है, वैसे देखा जाए तो गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए, वत्स को, वो भी बछड़े को मारना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि एक असुर है, कृष्ण उसका वध करेंगे। तो ये असुर के पास भगवान जाने लगे ऐसे कि जैसे उन्हें पता नहीं है, धीरे धीरे जा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या सोच रहा है, कहीं घूमकर मार तो नहीं देगा, भाग तो नहीं जाएगा, इस प्रकार से कि मानो उन्हें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वे तो सब जान रहे हैं कि अभी दो मिनट बाद, दो कुछ क्षणों बाद मैं इसको उठाकर पटकने वाला हूं, मैं इसको मारने वाला हूं। लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी लीला में इतने मग्न हो जाते हैं कि भगवान को स्मरण नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को भी दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी अवस्था में भूल जाते हैं। जैसे बड़ा सुंदर प्रसंग है नारद मुनि का, भगवान लीला करते रहे वृंदावन में और भूल गए कि उन्हें मथुरा जाना है, कंस का वध करना है। उन्हें तो बड़ा आनंद आता था, रोज गायों को चराने जाना, रोज किसी असुर को मारना, फिर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करना, माधुर्य रस की लीलाएं करना, गोपियों के साथ लीलाएं करना। बस यही तो चाहिए कृष्ण को, बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, और क्या चाहिए। लेकिन जो बाकी देवी देवता हैं उनको और बहुत कुछ चाहिए था कि कृष्ण कंस का वध करें। तो फिर नारद मुनि से प्रार्थना की कि आप ही जाओ और उन्हें याद दिलाओ, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति नहीं है। अब नारद मुनि भी घबरा रहे थे कि अरे कृष्ण को कैसे याद दिलाऊं, जाकर सीधे तो बोल नहीं सकते कि भाई कृष्ण चलिए अभी आपका समय हो गया है, क्योंकि भगवान का कोई समय नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब समय हो गया, इतने बजकर इतने मिनट पर जाना ही है, नहीं। तो फिर नारद मुनि ने सोचा कि कैसे याद दिलाना चाहिए। तो नारद मुनि गए और बड़ा गुणगान करने लगे कृष्ण का, और कृष्ण एकदम हैरान हो गए, भाई क्या हो गया नारद मुनि, अचानक क्यों गुणगान कर रहे हो? मैं आपकी लीलाएं देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे आपने इतने सुंदर सुंदर लीलाएं की, कैसे असुरों का वध किया, कैसे कालिया का दमन किया, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या बात है, और मैं आगे देखूंगा कि आप फिर मथुरा में प्रवेश करेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप कंस का वध करेंगे। तो उनको याद दिला रहे कि भाई आपको मथुरा में प्रवेश करना है, कंस का वध करना है, द्वारका जाना है, बड़े काम है, या अब आप खेलते रहोगे यहां पर तो कैसे चलेगा। तो फिर भगवान को ध्यान आया, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मथुरा जाना है, मुझे कंस का वध करना है, वृंदावन को छोड़ना होगा। तब फिर भगवान ने कहा ठीक है नारद, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, अहम भक्त पराधीनो, मैं जाऊंगा। तो इसी तरह भगवान भूल जाते हैं। तो यहां भी इस श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मुग्ध इव शब्दों का आशय है कि यद्यपि कृष्ण सब जानते हैं, किंतु यहां वे ऐसा बन रहे हैं जैसे वे नहीं जानते कि असुर बछड़ों के बीच में क्यों घुस आया। वो आया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं, जैसे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, या कहना चाहिए कि सही में भूल गए, लीला में इतने मग्न हो गए अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कि भूल गए कि अरे मैं तो असुरों का वध करने आया। तो फिर इस तरह से ये वत्स जो है वो गायों में चला गया, और फिर कृष्ण धीरे 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 उसके पास गए, और फिर यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उसको उन्होंने मारा। ग्रहित्वा पर पादाभ्याम सहलांगुल अच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिनोद्गत जीवितम्। वो कहते हैं कि तत्पश्चात कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली। बालकों को आदत होती है, गायों की पूंछ पकड़ लेते हैं। कृष्ण ऐसा किया करते थे, जब बड़े छोटे थे तो आंगन में गायें रहती थी, बछड़े होते थे, तो अब बछड़े भी छोटे से, उन्हें पता नहीं क्या होना है, और अचानक पूंछ पकड़ लिया करते थे कृष्ण। चल नहीं पाते थे लेकिन पूंछ पकड़ लेते थे। अब जैसे ही पूंछ पकड़ते थे बछड़ा घबरा जाता था, भागता था। अब वो भागता था और कृष्ण क्योंकि वो भाग रहा है उसको छोड़ नहीं पाते थे, तो अब बड़ी दुविधा हो जाती थी। कृष्ण छोड़ नहीं सकते हैं, बछड़ा रुक नहीं सकता है, तो सारे वो घर में भागा दौड़ी होती थी, और फिर सारा कृष्ण का जो शरीर है वो गोबर से, मिट्टी से वो लथपथ हो जाता था, और फिर ऐसे सैर करके, यात्रा करके फिर से वो वापस आ जाते थे। तो यहाँ पर भी उसी आदत को वो अभी दोहरा रहे हैं कि उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली, और फिर वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया। तो घुमाने घुमाने में ही उसके प्राण निकाल दिए उन्होंने, और फिर उसे एक कैथे पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। अर्थात भगवान चाहते थे उससे बहुत सारे फल गिरें, और उन सारे वृक्षों को गिराना चाहते थे, तो उन्होंने उस वृक्ष के ऊपर फेंक दिया उसको, तो फिर वो वृक्ष से बहुत सारे फल भी नीचे गिरे। यहाँ पर लिखा है कि इस तरह उस असुर को मारा कि कैथे के फल नीचे गिरे, जिनसे बलराम और अन्य बालक उसका लाभ उठाकर उन फलों को उठा सकें और उन्हें खा सकें। ये फल का वर्णन किया है कि ये मीठा और खट्टा फल होता है, इसीलिए इसे हर कोई पसंद करता है। तो भगवान ये चाहते थे कि इस असुर का मैं वध तो करूं, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्वाल बालों को भी आनंद दूं। तो असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत अच्छा कृष्ण, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए, कोई घबराया नहीं, छोटे छोटे बालक हैं लेकिन कोई घबराया नहीं। स्वर्ग लोक में सारे देवता प्रसन्न थे, अतः उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। तो भगवान ने इस तरह से इस वत्सासुर का वध किया। अब ये वत्सासुर हमारे हृदय में कौन से अनर्थ को अनर्थ का सूचक है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि ये अनर्थ बालिश मानसिकता, अर्थात बच्चों की जो मानसिकता है, या अपरिपक्व मानसिकता का सूचक है। तो दो तरह से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। पहली, कि किस तरह से बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, और दूसरा, भक्ति मार्ग में हमारी जो बचकाना हरकतें हैं, जो हमारा अपरिपक्व मन है, जो बच्चे के समान है, बालिश है, कैसे उसको हमें कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। तो ये दो प्रकार की चीजों का हम लोग वर्णन करेंगे। ये बालिश अवस्था या ये जो अपरिपक्व मानसिकता है हमारी, अपरिपक्व मानसिकता मतलब भक्ति में आ गए हैं लेकिन भक्ति के गूढ़ रहस्यों को या उसके छिपे हुए सार को हम समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, अपरिपक्व व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा आचरण नहीं करते या ऐसी भक्ति नहीं करते जो हमें पूर्णता दिला सके। उसका उदाहरण बड़ा सुंदर दिया गया है इस श्लोक में। इसमें बताया है, अवाप्त पंच संस्कारों लब्धवा द्विधा भक्ति का साक्षात कृत्य हरि तस्य धामनी नित्यं प्रमोदते। ये बताते हैं कि भक्ति मार्ग में पंच संस्कार अर्थात पांच संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और जब तक व्यक्ति अवाप्त पंच संस्कारों, इन पांच संस्कारों को प्राप्त नहीं करता, तो वो दोनों प्रकार की भक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी दृष्टि में जो व्यक्ति ये पंच संस्कारों को ठीक तरह से प्राप्त कर लेता है, वो दो प्रकार की भक्ति को प्राप्त करता है। कौन सी दो प्रकार की भक्तियां होती हैं? और न केवल दो प्रकार की भक्ति, साक्षात कृत्य हरि तस्य धामनी नित्यं प्रमोदते, केवल दो प्रकार की भक्तियों को ही प्राप्त नहीं करता बल्कि साक्षात भगवान के धाम में उनके संग में निवास करता है। अर्थात ये पांच जो संस्कार हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब तक इनको प्राप्त नहीं किया जाए तब तक हम ना तो भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दो प्रकार की भक्ति अर्थात वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, दोनों ही भक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम इन पंच संस्कारों को नहीं ग्रहण करते। और फिर इस पंच संस्कार की भक्ति को या पंच संस्कारों को ग्रहण करने से ही हम भगवान के धाम में अपने आप को स्थित करा सकते हैं, क्योंकि भक्ति में ये पंच संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इस कलयुग में केवल भक्ति ही एक मार्ग है, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरा स्थितः। इस कलयुग में केवल भक्ति और भक्ति ही है जिसके द्वारा जीव कृष्णपुर अर्थात भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में अपने आप को स्थित कर सकता है। ये पद्म पुराण का वाक्य है। तो इसीलिए हमें ये पंच संस्कार करने होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये पंच संस्कार क्या हैं? इनका वर्णन कल करेंगे, क्योंकि अभी अगर वर्णन शुरू किया तो बहुत समय हो जाएगा, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो इसीलिए कल आप लोग समय पर आइएगा तो हम लोग कल ये पंच संस्कारों का वर्णन करेंगे कि ये कौन से ऐसे 5 संस्कार हैं जिनके द्वारा हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। और ये 5 संस्कार भी 2 तरह से समझने होंगे हमें, एक वो जो बालिश बुद्धि के द्वारा हम समझते हैं, अर्थात उनका साधारण रूप ले लेते हैं कि जो उनके नाम हैं केवल नाम से जो उनका महत्व प्रकट होता है, लेकिन उसका एक गूढ़ रहस्य भी है कि उनको कैसे समझना चाहिए। तो इन दोनों प्रकार से हम कल इन पंच संस्कारों को समझने का प्रयास करेंगे, और ये निश्चित है कि अगर इन पंच संस्कारों को हमने ठीक से समझ लिया तब फिर हमारे लिए कृष्ण भक्ति की सारी बाधाएं, सारे अनर्थ, ये वत्सासुर समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये माइक ऑन कर।
हरे कृष्ण। गर्ग संहिता मतलब गर्ग मुनि जो भगवान के नामकरण किए थे उन्हीं से प्यार?
हाँ, गर्ग मुनि, ये इनको गर्गाचार्य भी कहते हैं, और इन्होंने एक संहिता, जैसे ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं भगवान का, प्रार्थनाएं हैं और भगवान के रूप का वर्णन है, उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। ऐसे गर्ग मुनि के द्वारा कही गई गर्ग संहिता, ऐसे कई संहिताएं हैं तो इसको गर्ग संहिता कहते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, माइक दीजिएगा प्लीज। कह देते हैं वो सही हो जाता है तो तो क्या मानना चाहिए, आप शुद्ध भक्त हैं? प्रश्न ऐसा है महाराज जी का कि प्रभुपाद ने जो कहा वो सत्य भगवान ने कराया क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो कहते हैं वो भी सत्य हो जाता है ना? तो क्या हम लोग शुद्ध भक्त हैं? वो तो नहीं है, वो तो हमें पता है, तो फिर ये कैसे सत्य होता है? कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि भगवान भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए चॉकलेट देते हैं। चॉकलेट जानते हैं, आपने चॉकलेट खाई है कभी? तो चॉकलेट देते हैं मतलब स्वाद देते हैं थोड़ा सा, जिससे लगता है कि बस अब और आगे बढ़ना चाहिए, और खाने की इच्छा बढ़ जाए। फिर जब और खाने जाते हैं तो भगवान कहते हैं अब थोड़ा प्रयास करो, जैसे नारद मुनि से किया। नारद मुनि को दर्शन दिए, नारद मुनि ने दर्शन लिए, नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, अचानक दर्शन नहीं मिले, नारद मुनि व्याकुल हो उठे, तो भगवान ने कहा अब दर्शन नहीं होंगे, अब तपस्या करो, अब अगले जन्म में दर्शन होंगे। तो ये थोड़ा सा उनके हृदय में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भगवान पर आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भक्ति पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए कभी कभी भगवान ये कार्य कर सकते हैं, या कहना चाहिए कि आपके कर्मों के द्वारा वो कार्य हो जाता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि भगवान केवल भक्तों के जीवन को सीधे निर्देशित करते हैं, सबके जीवन को नहीं करते। बाकी के जीवन जब तक आप उनको समर्पण नहीं करेंगे तब तक आप माया के अधीन, प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको अच्छा बुरा मिलता रहेगा। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार वैसे भी मिलने वाला था, ये भगवान की कोई बड़ी कृपा नहीं है। और दूसरा, अगर आपने जो कहा या आपने जो मांगा वो आपको मिल गया तो मानना चाहिए कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। सही है? क्यों सब लोग पूछ रहे? अरे भाई क्यों? क्योंकि हमने जो मांगा, हमने जो इच्छा की वो दूषित मन से की है, और इस दूषित मन से केवल दूषित इच्छाएं निकलती हैं, इस भौतिक जगत में बांधने वाली इच्छाएं निकलती हैं, और फिर ऐसी इच्छा अगर पूरी भी हो जाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन व्यक्ति हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से, जैसे हम लोगों ने प्रार्थना सुनी थी नल कुंवर और मणिग्रीव की, वो प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर उसको भगवान पूरा कर रहे हैं या वो प्रार्थनाएं हमारी पूरी हो रही हैं, तो मानना चाहिए कि ये किसी भक्त की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि अभी तक हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान हमारे जीवन का निर्देशन करें। लेकिन एक भक्त कर देते हैं, भक्त ये नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, इसके ऊपर मैं कृपा करूं या ना करूं। भक्त तो सब, प्रभुपाद ने इतने सेंटर खोले, इतने लोगों पर कृपा की, इतने लोगों को हरि नाम दिया, प्रभुपाद ने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, उसका पूरा बायोडेटा नहीं पढ़ा, जो आया उसको हरि नाम दिया। ये भक्तों की कृपा है, इसीलिए भगवान से ज्यादा भक्त कृपालु है। भगवान केवल शुद्ध भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और वो शुद्ध भक्त सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसलिए कई दृष्टि से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, आपने उत्तर दे दिया। गौर निताई ने कृपा की क्योंकि क्योंकि भक्त के रूप में आए थे, इसीलिए वो इतने कृपालु हुए, इतने कृपालु हुए महावदन्याय, उनके जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि भक्त के रूप में आए थे। तो भक्त के रूप में आके ये समझा रहे हैं कि भक्त ज्यादा कृपालु होते हैं, मुझसे ज्यादा कृपालु मेरे भक्त हैं। और कोई प्रश्न? आप लोगों को ये सत्र अच्छा लगा होगा। कल इसका आखिरी दिन है, क्योंकि उसके बाद फिर जन्माष्टमी का उत्सव आएगा। तो कल वत्सासुर की कथा को समाप्त करेंगे। विशेष करके पंच संस्कार ये बड़े महत्वपूर्ण हैं कि किस प्रकार से, और ये हम लोग सब जानते हैं, कोई हम नई बात नहीं बताने वाले हैं। अभी आप लोगों को लगेगा कौन से पांच संस्कार हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब आप जानते हैं, जिनको हम कल बताएंगे ये सब आप जानते हैं। लेकिन केवल उसको कैसे समझना है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन पांच चीजों को अपने जीवन में बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे इनमें से कई चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं, पांच में से कई संस्कार, फिर भी कल हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक निवेदन आप लोगों से है कि कल हम प्रयास करेंगे इस सत्र को थोड़ा जल्दी समाप्त करें, और फिर हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अनुभव इस सत्र के, हमें यहाँ पर आकर कोई भी दो तीन प्रभु जी और दो तीन माता जी ये बतलाएं, ताकि ये जान सकें कि इस, या फिर बतलाएं कि इस सत्र के द्वारा क्या हृदय परिवर्तन हुआ, या क्या आप प्रयास करेंगे हृदय परिवर्तन करने का इस सारे सत्र को सुनने के बाद। क्योंकि इस पूरे समय में हमने बार बार इस बात को दोहराया था कि ये इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग अपना हृदय परिवर्तन कर सकें। तो इसलिए हम ये निवेदन करते हैं आप लोगों से कि कल आप में से कुछ लोग इसको जरूर हिचकिचाइएगा नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन केवल इससे ये पता चलेगा कि कितना ज्ञान आपके हृदय में गया है। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोगों में से कुछ लोग कल आकर, दो तीन माता जी या दो तीन प्रभु जी आकर ये समझाइए, बाकी लोगों को उत्साह दिलाइए। हम तो उत्साह नहीं दिला पाए इतने समय में, लेकिन शायद आपके कहने से हो जाए। तो आप लोग उत्साह दिलाइए कि कैसे इन चीजों को अपने जीवन में उतारना। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न कुछ कहना चाहते हैं? कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, 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 राम हरे कृष्ण।